SBS रेडियो पर मैं हूँ आपके साथ अनीता परार।
संतूर एक लोकप्रिय व प्राचीन वाद्य यंत्र, धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले भारत की कश्मीर की वादियों की खामोशी को सुरीला करता एक ऐसा साज है जिसका नाम शतंद्री वीणा से उपजा, क्योंकि इस वाद्य में 100 तार होते हैं। वैसे आधुनिक संतूर वाद्य में 40 से लेकर 100 स्ट्रिंग्स हो सकती हैं। इस यंत्र को कश्मीर घाटी के पारंपरिक संगीत से निकालकर शास्त्रीय संगीत के वाद्य यंत्र के रूप में अपना एक प्रमुख स्थान दिलवाया महान पंडित शिव कुमार शर्मा जी ने। और अब विश्व संगीत में पश्चिमी वाद्यों के बीच सुनाई देती है इस साज की अनोखी मनमोहक स्वर लहरियाँ, और इसका श्रेय जाता है पंडित जी के बेटे राहुल शर्मा को, जो इस विरासत को नई ऊंचाइयां देने में जुटे हैं। राहुल जी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर आ रहे हैं, तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं। राहुल जी, SBS हिंदी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
बहुत बहुत शुक्रिया अनीता जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन SBS हिंदी।
राहुल जी, आप संतूर वादक हैं, एक अलग ही तरह का साज है ये, बहुत सारी तारों वाला, तो जो उसकी झनकार होती है और उससे जो संगीत बनता है, क्या कहते हैं ऐसे संगीत को?
देखिए, संतूर जो साज है ये ओरिजिनली कश्मीर को बिलोंग करता है, और मेरे फादर और गुरु लेट पंडित शिव कुमार शर्मा ने इस साज को एक प्रेजेंस दी पूरे हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया में उसको लेके गए, ट्रैवल किया, उसको क्लासिकल म्यूजिक का एक दर्जा दिया। और मैंने जब मेरे जहन में आता है, जब मैं करीब 6-7 साल का था, जब मैंने तब से मैंने प्रैक्टिस करना जो मेरा रियाज शुरू हुआ, तो संतूर एक साज उस समय भी मुझे ऐसा लगता था कि बहुत स्वीट है, बहुत मेलोडिक है, और कभी कभार तो जब पढ़ाई भी चल रही होती थी वो बैकग्राउंड में चलते रहता तो अच्छा लगता था, डिस्टर्ब नहीं होता था। एंड ऑफ कोर्स लेटर ऑन जब बजाने लगे तो उसका एक अलग मजा आया, और बहुत लोगों को ऐसा लगता है ये जो साज है इट्स वेरी रेमिनिसेंट ऑफ वाटरफॉल्स, you know, mountains, जो उसके उसका जो character है, it's beautifully connected to nature, मैं कहूँगा, and that's the beauty about it.
जी जी, कभी तो ये background में हुआ करता था, और फिर के पिता ने पंडित शिव कुमार शर्मा जी की वजह से ये forefront पर आ गया, और अब आप इसे विश्व स्तर पर दूसरे instruments के साथ एक अलग पहचान दे रहे हैं इस इंस्ट्रूमेंट की, यानी मेरा मतलब है आप कोलैबोरेट कर रहे हैं, फ्यूजन कर रहे हैं, तो उस अनुभव के बारे में आपसे जानना चाहूंगी, खास तौर से क्योंकि ये जो इंस्ट्रूमेंट है एक, जैसे आपने बताया कि बिल्कुल जैसे शांत सुकून देने वाला, और कई बार वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स तो काफी अलग तरह की बात करते हैं, तो कैसा है वो अनुभव, मतलब कैसा लगता है वो?
मुझे पर्सनली ऐसा लगता था कि जो संतूर है वो क्लासिकल म्यूजिक तो आ गया है, लेकिन जो जिस किस्म का म्यूजिक मैं सुनता था व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, सिर्फ क्लासिकल नहीं था, फ्यूजन भी था, बहुत सारे रॉक ग्रुप्स थे, तो हर किस्म का म्यूजिक, फिल्म म्यूजिक था, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं इसको उस जॉनर ऑफ म्यूजिक, वर्ल्ड म्यूजिक में एक्सपेरिमेंट करूँ, और ये कैसा उसमें लगे इसका मुझे बहुत एक इंटरेस्ट था। और आई थिंक फ्रॉम द ईयर 99 या 2000 में, मुझे लगता है जो फर्स्ट मैंने एक एल्बम किया था जेन, जो एक फ्यूजन एल्बम था जिसको MTV बेस्ट एल्बम अवार्ड मिला के, तो उससे एक फैन बेस डेवलप हुई जो ये साज को फ्यूजन में एक्सेप्ट करने लगी, और फिर बहुत सारे दूसरे अलग एल्बम्स हुए, केनी जी के साथ हुआ नमस्ते, या फिर रिचर्ड क्लेडमैन के साथ हुआ, हमने करीब 2 एल्बम्स किए साथ में, फिर इलेक्ट्रॉनिका ग्रुप जो है ग्रैमी विनिंग डीप फॉरेस्ट, फ्रेंच इलेक्ट्रॉनिका, उसमें भी किया, तो द फैक्ट दैट आई थिंक एक आर्टिस्ट की ये एक विजन होती है कि अगर आप उसको कंपोज कर सकें और इमेजिन कर सकते हैं कि आपका साज कैसे हाईलाइट हो सकता है अलग जॉनर ऑफ म्यूजिक, तो अगर वो ठीक से किया जाए तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट ब्लेंड कर सकता है, और खास करके संतूर मेरे लिए बहुत ही स्पेशल इंस्ट्रूमेंट था क्योंकि सुनते आए थे गुरु, मेरे फादर थे, तो उसको एक्सपेरिमेंट करना भी एक रिस्की बात थी, लेकिन वो सक्सेसफुल हुआ। और सबसे मजे की बात है कि मेरे फादर कहा करते थे कि मुझे सबसे अच्छा तुम्हारा जो एल्बम लगता है वो जो रॉक जॉनर का एल्बम द रिबेल जो तुमने किया है, मुझे सबसे ज्यादा वो पसंद है। तो ये एक वैलिडेशन था उनसे,
बिल्कुल
ये साज अलग जॉनर्स में भी अच्छा लग सकता है।
जी, तो मैं असल में आपसे पूछना तो कुछ इसी तरह की चाह रही थी कि जब कोई एक विशुद्ध साज बज रहा होता है या फ्यूज़न में होता है, तब जो संगीत बजता है तो उसमें क्या बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है? आपने कुछ तो मुझे बता ही दिया, लेकिन फिर भी अगर हम कुछ एक या दो एलिमेंट्स की बात करें, ये सोच के कि वो पसंद आएगा सबको, उससे वही भाव आएगा जो एक विशुद्ध संगीत साज से निकलता है। जैसे हम कहते हैं कि संगीत तो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाता है, आपको कहीं डिवाइन पावर से जोड़ देता है। तो जब फ्यूजन होता है तो क्या ध्यान रखते हैं सबसे ज्यादा?
सबसे ज्यादा उसमें ये ध्यान रखना होता है कि अगर आपका बेस क्लासिकल का है, जो कि एक बहुत बड़ा महासागर है, मतलब उसमें आप जितना करते जाओ आप उसमें सीखते चले जाएंगे, डूबते चले जाएंगे, और वो जिंदगी भर एक प्रोसेस है जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है वो कभी खत्म नहीं होता है, और वो स्पिरिचुअल है, वो कनेक्टेड है स्पिरिचुअलिटी से। लेकिन जब आप फ्यूजन कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका इंस्ट्रूमेंट, उसका टेम्परमेंट क्या है, उसके हाइलाइट्स क्या है, उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, उस हिसाब से अगर आप कंपोज करें। एंड द फैक्ट दैट मैं शुरुआत से ही कंपोज करता था, तो ये मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी कि मैं अपना खुद का म्यूजिक कंपोज करूं। तो आई थिंक दैट वाज एन एडवांटेज कि आई कुड सी वेदर द इंस्ट्रूमेंट इज फिटिंग, क्योंकि मैं एक कंपोजर भी था।
जी।
तो उस हिसाब से मैंने जितने भी करीब 50-60 एल्बम जो भी किए वो खुद ही कंपोज करके किए, चाहे मैंने वो कोलैबोरेशन किए या सोलोस किए या थीमेटिक किया, लेकिन वो देखो ऑल कंपोज बाय मी। तो आई थिंक आपको फिर वो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मेरा इंस्ट्रूमेंट है, मैं खुद ही उसकी धुन बना रहा हूँ, तो मुझे पता है कहाँ अच्छा लगेगा और कहाँ नहीं अच्छा लगेगा।
जी बिल्कुल, आपने कंपोजर की बात की तो उस पर मैं ये भी कहूँगी कि आपने तो बॉलीवुड में भी संगीत दिया है, तो क्या भविष्य में फिल्म संगीत आपकी वो कंपोजिशंस भी सुन पाएंगे?
जी, ऐसा होता है कि फिल्म म्यूजिक जो है उसमें समय बहुत ज्यादा लगता है और एक बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, सिर्फ अकेला मेरा डिसीजन नहीं होता है। जब एज अ म्यूजिक डायरेक्टर मैं होता हूं, उसमें जो डायरेक्टर का विजन है वो आपको मैच करना होता है, और बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लेकिन जब आप स्टेज पे परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, क्लासिकल म्यूजिक बजा रहे हैं, उसका जो एक जो ऑडियंस के साथ कनेक्ट होता है और जो एक एलिवेशन आप एक ऑडियंस को स्पिरिचुअली एक अलग जगह पे ले जाते हैं, उसका कोई कंपैरिजन आई फील फिल्म म्यूजिक के साथ नहीं है। लेकिन फिल्म म्यूजिक मैं करते आया हूँ बीच बीच में जब भी ऐसे मौके आए हैं, और फ्यूचर में भी कुछ ना कुछ आई गेस होगा ही, बिकॉज I love composing and जब वो space मिले, जब ऐसा कोई subject हो तो वो अच्छी तरह fit होता है कि इसमें भी मजा आए, film music में भी मजा आए और classical में भी आए। तो it just depends कि आपको correct time, subject and right place and right time जैसे कहते हैं वो आपकी जिंदगी में हो, तो फिर वो as a performing artist fit हो जाता है।
बिल्कुल, तो एक और बात आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या संतूर बजाने के लिए गायकी का ज्ञान आवश्यक है? मुझे ऐसे याद आ रहा है कहीं मैंने पढ़ा है। जी,
इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है आपने, कि क्योंकि जो भी एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट बजाता है वो अंदर से गा ही रहे हैं आप, तो शुरू में वोकल जानना बहुत जरूरी है, और खास करके संतूर में, क्योंकि संतूर के जो करीब 100 तार हैं उसको सबसे पहले आपको ट्यून करना आना चाहिए। तो अगर आप उसको मन में गाएंगे नहीं तो आप उसकी सही श्रुति से ट्यून नहीं कर पाएंगे। तो जो उसकी एक ट्यूनिंग है, सबसे पहले उसका रियाज होना पड़ता है कि आस्ते आस्ते आप वो जो हर एक राग की एक अलग श्रुति होती है तो उसके हिसाब से उसकी ट्यूनिंग परफेक्ट होनी चाहिए, और फिर आप उसको जो रागदारी है, आलाप है, उसमें जोर जाला है, तो उसमें आपको बिल्कुल गायकी का ही अंग एक लाना है। हालांकि ये स्टकैटो इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन इसमें हमने मींड भी, हम लोग मींड भी बजाते हैं जो एक गाने का अंग होता है, वो भी इसमें पाया जाता है। तो वोकल कुछ हद तक बहुत जरूरी है, और मैं कहूंगा तबला भी, क्योंकि जो ताल है और जो वोकल है दोनों का एक आइडिया हो तो फिर वो संगीत अलग हो जाता है।
जी, यानी सुर और ताल दोनों का ज्ञान तो आवश्यक है ही अगर आप संगीत से जुड़े हैं। तो चलते चलते हमारे संगीत प्रेमियों के लिए या जो संगीत सीख रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे?
मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अच्छा म्यूजिक सुनिए, सब किस्म का म्यूजिक सुनिए, लेकिन जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है, आजकल की लाइफ में जो मोबाइल फोन डिजिटल टेक्नोलॉजी से आपके हर एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रेस हो जाता है, और उस स्ट्रेस निकालने के लिए अपने लाइफ को जरा काम और सीरीन बनाने के लिए आप इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सुनिए, जो आपको इंस्ट्रूमेंट पसंद है वो सुनिए, क्योंकि ये जो राग हैं इनमें कहते हैं कि थेरेप्यूटिक है ये जो म्यूजिक है, इट्स आल्सो काइंड ऑफ थेरेपी। इसमें आपको अलग अलग रागों से अलग अलग तरह की इमोशंस का एक यू नो मिल सकता है, ग्लिम्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस यू कैन फील, जो जो सूर्यास्त के टाइम जो एक इमोशन है वो सनराइज के टाइम डिफरेंट है। तो ये सब वो रागों में एक्चुअली वो डिवोशन है, वो फीलिंग्स है। सो आई थिंक जो जो यंगर जनरेशन है चाहे वो फ्यूजन सुने लेकिन क्लासिकल will give them the peace of mind. So I think as Indians, I think you all should, the young listeners should get attuned to Indian classical music just for calming their mind. And then later on, usme bahut sara enjoyment hai, ek alag trance hai, ek alag level pe aapko le jaya sakta.
Ji, bilkul. राहुल जी, आप अपनी इस विरासत को जिस तरह से संजो कर रखे हुए हैं ना, और उसको एक नई पहचान दे रहे हैं, एक नया रूप भी दे रहे हैं कोलैबोरेशन करके, फ्यूजन करके, तो बस हमारी तो यही कामना रहेगी कि आप यूं ही अपने सुर बिखेरते हुए हमारी अनुभूति को संगीत में करते रहें। और
बहुत शुक्रिया अनीता जी, और कोशिश जारी रहेगी, और मैं ऑस्ट्रेलिया आऊंगा तो वी आर ऑल एक्साइटेड टू कम।
जी, हमें भी बहुत आपकी प्रतीक्षा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी आपके समय के लिए। जी जी जी,
मैं और कहना चाहूंगा कि ये जो कॉन्सर्ट सीरीज है, दिस इज डेडिकेटेड टू, इट्स अ ट्रिब्यूट टू माय लेट फादर पंडित शिव कुमार शर्मा। मैं ऑस्ट्रेलिया बहुत साल पहले आया था के साथ जब वो मैड और अलग जगह आया था, लेकिन इस बार इट्स अ ट्रिब्यूट कॉन्सर्ट सीरीज एंड इट्स बहुत ही अलग चीज है, और मैंने सोचा नहीं था कभी इस तरीके से मैं ऑस्ट्रेलिया आऊंगा, व्हिच इज वेरी पर्सनली कनेक्टेड टू मी।
जी, बहुत आपको धन्यवाद कहना चाहूंगी आपके समय के लिए, और ढेरों शुभकामनाएं भी। SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।